الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي شاء الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے سائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام اسلام فار آل آپ دیکھ رہے ہیں آج موضوع آپ کے لے کر آئے ہیں وہ بھی معاشرے کی ایک اہم حقیقت کی طرف ہے اور یہ موضوع اٹس ہائیلی ڈیبیٹیبل بیکاز اٹس سم تھنگ وچ ہیومنس ڈو اٹس اے پارٹ آف ہیومن بیہیویئر یہ انسان کا ایک رویہ ہے جو کہ انتہائی غلط ہے اور آج ہم اس سے بات کریں گے کہ رویہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا تدارک کی صورتیں ہیں پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے اسلام فار آل اس کا مطلب یہ کہ اسلام ایک حتمی اور اٹل دین ہے اور اسلام ہمیں ہر طرح سے رہنمائی فراہم کرتا ہے رویے کیا رکھنے ہیں رشتوں کا لحاظ کیا رکھنا ہے دنیا پوری کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں انہیں جو بھی مسئلہ درپیش ہے اس مسئلے کا حل دین اسلام کے اندر موجود ہے اسی لیے ایک مشہور اور جانا پہچانا غیر مسلم انسان تھا جس کی تعلیم بھی کافی زیادہ تھی اور بڑا مشہور بھی تھا اس سے جب پوچھا گیا کہ ہاؤ وی کین برنگ بیک دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ ہم دنیا کے اندر وہ امن اور سکون جو گم ہو چکا ہے اس کو واپس کیسے لے کر آ سکتے ہیں تو اس نے مڑ کر یہ جملہ کہا تھا یہ جواب دیا تھا برنگ بیک دا سسٹم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ یو ول سی دیٹ دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس از بیک ان دس ورلڈ کہ جاؤ اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام واپس لے آؤ تم دیکھو گے دنیا کو دوبارہ سے کھویا ہوا امن اور سکون مل گیا ہے اور یہ بات ایک غیر مسلم نہیں بلکہ پوری صف ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل دنیا میں امن کی ترویج اگر کرنی ہے رشتوں کی پہچان اگر کرانی ہے یہ ٹوٹتی ہوئی فیملیز کو اگر دوبارہ جوڑنا ہے تو اس کے لیے دین اسلام سے بہتر کوئی ڈسپلن کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اور کوئی بھی نظام نہیں ہے تو آئیے ہم بھی اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں گے اس سے پہلے یہ ضرور سوچیں گے کہ میرا پیارا دین اسلام اس حوالے سے میری کیا رہنمائی فرماتا ہے حتیٰ کہ آپ کوئی کام کرنے لگے آپ تجارت کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں آپ پروفیشنل ہیں جو بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں سوچیں رک جائیں اور رہنمائی لیں کہ میرا دین اسلام اس کام کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ اپنی والدہ سے تعلق ہے آپ کا باپ ہے بھائی ہے ایک اجنبی ہے استاد ہے سب کے ساتھ تعلق سے پہلے یہ سوچیں میرا دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے آج کا ٹاپک ہے جناب دو چہرے ڈبل فیس دو چہرے سے کیا مراد ہو سکتی ہے اٹس ویری آبویس یہ جو بات کچھ ہے اور کہہ کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ ہے چہرے پہ کچھ ہے اور بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر ماسک چڑھے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور وہ ماسک جو ہے وہ پھر جو گرتے ہیں اصل چہرہ سامنے آتا ہے جو کہ بہت عجیب سا ہوتا ہے آپ خود سوچیں اگر سڑک پہ چلتا ہوا کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس کے دو چہرے ہیں یہ ایک بات ادھر کرتا ہے دوسری بات ادھر کرتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی اور اب آپ اپنے بارے میں سوچیں اگر آپ بھی ایسے کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہوگی یہ بڑا مشہور مقولہ کہ تین بندوں کو کبھی نہ بھولنا نمبر ایک جس نے مصیبت میں ساتھ دیا نمبر دو جس نے مصیبت میں ساتھ نہیں دیا اور نمبر تین جس نے مصیبت میں ڈالا تو یہ کچھ باتیں جو ہم لے کے چلتے رہیں گے آئیے میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کراؤں بہت ہی مشہور ہمارے مدنی چینل کے پریزنٹر جناب مولانا مہروز مدنی صاحب ماشاء اللہ ویلکم مہروز بھائی پروگرام میں اور ساتھ ہے ہمارے شہزاد گانچی بھائی ہمارے مدنی چینل کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور مدنی چینل پر آپ بہت جگہوں پر ان کو دیکھتے ہوں گے ماشاء اللہ یہ آج مصروف گفتگو رہیں گے ہمارے ساتھ اور جناب آج بالکل ہی چٹ چیٹ کے ماحول میں ہم بات کریں گے تاکہ اس موضوع کے اندر ڈیپ ڈاؤن جا کے ہم کچھ سیکھ سکیں فیروز بھائی ڈبل فیسڈ دو چہرے اگر یہ بات آپ سے کہی جائے تو پہلی بات کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ عالم بھی ہیں بات کو اچھی طرح سمجھا بھی سکتے ہیں واٹ از ایکچولی ڈبل فیسڈ دو چہرے سے کیا مراد
دوگلا پن جیسے کہ آپ نے اپنی تمہید میں بھی بیان کیا اور صوبان بھائی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پروگرام کے تعارف میں بھی کہا کہ اسلام جو ہے حتمی اور اٹل دین ہے और अगर हम इसको देखें कि इस्लाम फॉर दी ऑल, तो सबके लिए है इस्लामी तालीमात। इस्लाम ने जिन अफराद की मजम्मत की, जिन अफराद की बुराई बयान की ना, उनमें सबसे तफसीली बुराई जो बयान की है शहजाद भाई, वो मुनाफिक की बयान की है। और मुनाफिक क्या, मुनाफिक दो तरह का होता है, एक एतिकादी होता है, एक अमली होता है। आज हम जिस पे गुफ्तगू करेंगे वो अमली है, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा चाहूंगा कि मुनाफिक के एतिकादी जो उसका बयान कर दूं।
महरूज भाई, आपने दो रुखे बंदे का नाम मुनाफिक यहाँ पर,
जी बिल्कुल,
वो मुनाफिक
मुनाफिक कहा गया है, कुरान में भी बयान हुआ है, हदीस में भी बयान हुआ है, अलबत्त फिर इसकी दो इकसाम बयान हुए, एक है मुनाफिक एतिकादी। कुरान करीम में जिस गैर मुस्लिम की सबसे ज्यादा मजम्मत की गई है तबके की, तो वो मुनाफिकीन का तबका है कि जिन्हें कहा गया ये धोखा देते हैं। और कुरान करीम ने बयान किया कि ये अपने आप को असल में धोखा देते हैं, समझते तो ये हैं कि ये मुसलमानों को, उनके रसूल को और खुदा को धोखा देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये अपने आप को धोखा देते हैं। और इनका अंजाम ये बयान किया कि ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो ये मुनाफिक एतिकादी जो गैर मुस्लिम काफिर है उसके लिए बयान किया गया, लेकिन इसी का एक दूसरा पार्ट है और वो मुसलमानों के अंदर भी पाया जा सकता है, और वो है मुनाफिकत अमली। जो बात आपने कही सादा लफ्ज में कि दिल में कुछ हो और जबान पे कुछ हो, मुनाफिक एतिकादी जो थे, काफिर जो थे, उनका भी एटीट्यूड यही था। जब वो अपनों में जाते थे तो कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे माबूदों को, तुम्हारे झूठे खुदाओं को मानते हैं। और जब सहाबा इकराम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो फिर उनसे कहते थे नहीं, हम आपके साथ हैं। तो जो मुनाफिक एतिकादी है उसका तो बाप इस एतबार से खत्म हो गया कि अब हम किसी पे मुनाफिक एतिकादी का यूं हुक्म नहीं लगा सकते कि वही का सिलसिला रुक गया। लेकिन मुनाफिकत अमली क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाइए। मैं यहाँ एक हदीस बयान करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जब हमारी गुफ्तगू होगी तो इसको मजीद डिस्कस करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चार अलामतें जिस शख्स में होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और इनमें से एक अलामत होगी तो उस शख्स में मुनाफिकत की, निफाक की एक अलामत पाई गई, यहां तक कि वो उसको छोड़ दे। फरमाया जब अमानत दी जाए तो बददियानती करे, अमानत में खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और झगड़ा करे तो गाली। अब ये जो हदीस पाक मैंने यहाँ कोट की, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकत की, दोगलेपन की, ड्यूल पर्सनैलिटी की चार अलामतें बयान फरमाई, और फरमाया वो खालिस मुनाफिक हो। और यहाँ तशरीहात में उलमा ने यही बयान किया कि वो शख्स दोगला होगा, यानी साहिब ईमान होगा लेकिन अमल के मामले में कमजोर होगा।
ये जो बातें हैं ये उसको दायरे ईमान से खारिज नहीं,
दायरे ईमान से खारिज नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें इस पे इतलाक किस चीज का हो रहा है। बाज औकात सोबान भाई हमारे ऊपर या मुआशरे में किसी फर्द के ऊपर जो जुमला उसे, जो लफ्ज कहा जाता है ना, उसे भी पता होता है, कहने वाले को भी पता होता है मैं ये नहीं हूं, लेकिन उसे बहुत नागवार गुजरता है, बहुत नागवार। किसी जानवर में मिला दे, यानी कुत्ते में मिला दे, सुअर में मिला दे, तो कितना नागवार गुजरता है, सुनने में भी बुरा लगता है। तो कहने से हो तो नहीं गया वो, लेकिन वो सुनना ही बुरा है। तो यहाँ पे जो ड्यूल पर्सनैलिटी है, अगरचे वो काफिर तो नहीं है, वो साहिब ईमान है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि एक उस लफ्ज का आपके ऊपर इतलाक हो रहा है, एक वो लफ्ज आपके लिए बोला जा रहा है, आपकी एक गलत हरकत की बिना पे, जो मुसलमान की शान निशान नहीं। तो मुझे तो बचना है ना। देखिए एक चीज है, इस्लाम कहता है आप इज्जत चाहो, यानी डिमांड ऑफ रिस्पेक्ट, इससे मना फरमाता है इस्लाम कि मैं चाहूं सुबान भाई मुझे इज्जत दे, ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, दीन इस्लाम ने कहा आजीज इख्तियार। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी चीज है कि मैं अपने आप को जिल्लत पे पेश करूं, तो इस्लाम इस चीज की भी इजाजत नहीं देता कि आप अपने आप को जिल्लत पे पेश करो, बल्कि अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ करो,
अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ करो, जिल्लत पे पेश ना करो, दोगलापन है। वैसे आमतौर पर शहजाद भाई ये जो इंसान दोगलापन कर रहा होता है इसी कुछ वजूहत होती है, मतलब कोई चीज है ना जो कि इसको लेकर आती है। एक तो ये हो सकता है कि कोई इम्प्लॉय बॉस के ऊपर दोगलापन कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल बॉस के बारे में राय उसकी कुछ और है, लेकिन प्रमोशन के लिए, पे रेस के लिए उसके सामने उसकी तारीफ कर रहा है। अच्छा अभी कमरे में जाके बॉस के कमरे में तारीफ करेगा, निकलते साथ ही पीछे जाके उसी बॉस के बारे में देखा आज कैसा मैंने सेट रखा, देखना मेरे साथ क्या होगा, ऐसा होता था ना भैया, दोगलापन की वजह से ही आता है।
असल में शोभन भाई, मौजूदा माशरे में आप लोग की भी ऑब्जर्वेशन होगी, मेहरोज भाई की भी आपकी, कि इस वक्त है ना, ये बड़ा एक जहर की तरह, ये जो आपने एलिमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं, ये फैलता जा रहा है, और बॉस के अलावा भी, यानी आप अपने इलाके में ले लें, ऑफिस में ले लें, अपने दोस्तों में ले लें, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे दो मुनाफिकत कह लें, दोगला पॉलिसी कह लें, डबल फेस कह लें, या डुअल पर्सनैलिटी कह लें, वो बढ़ती चली जा रही है ना। एक मैं मिसाल दे दूं, जैसे अब अभी स्क्रीन पर है ना, तो अभी हम काफ़ी यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या कुछ है ना ऐसा फील कराने के लिए कि मैं स्क्रीन पर है ना इस तरह का बोलता हूँ, इस तरह का हूँ, और लोगों को मैं ये चाहूंगा कि वो है ना कि लोग मुझे पसंद करें, अच्छा ही समझे, और पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। तो ये बहुत सारा इस तरह के माशरे में चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल राय
अरे
है।
शहजादी, इसमें तो एक
या
प्रोफेशनल चीज भी आ जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम बैठे हैं, हर प्रोफेशन का भी एक तकाजा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये मैं रोज भाई से मैं क्वेश्चन ही करने लगा था, एक तो जिस तरह से हमारा यहाँ पर आना, और एक एक बंदा जो सुबह उठता है वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल जा रहा है, ऑब्वियसली उसका जो गाउन होगा वो कुछ अच्छे अंदाज से होगा और खूबसूरत चीजें पहनेगा, जो भी उसकी ड्रेसिंग होती है उस वक्त के लिए। और एक मेडिकल तहकीक भी ये कहती है कि वो जगह जहाँ यूनिफॉर्म होता है, उस जगह पर जाने से पहले अगर बंदा यूनिफॉर्म पहने ना, उसका बेंट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आईजी साहब है पंजाब के, सिंध के जो पुलिस के आईजी साहब है, जब वो आएंगे जिस वक्त, तो अपने घर की और ड्रेसिंग है
जो भी
और
ड्रेस कोड है
जैसे
जहाँ का,
वो जैसी ड्रेस उन्होंने पहना, उनका बेंट ऑफ माइंड बदल जाएगा, अब वो उसके अंदर आ जाएंगे। अक्सर औकात वार्डन होते हैं पंजाब के अंदर, ट्रैफिक के वार्डन होते हैं, वो भी जब खड़े होते हैं आके अपनी ड्यूटी पे, वो चेंज करते हैं यूनिफॉर्म। तो ये भी एक एस्पेक्ट तो है कि इंसान हर जगह पर इखलास के साथ अपने ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करे, लेकिन कुछ जगहों की प्रोफेशनल्स भी होती है ना, यानी एटिकेट्स होते हैं, अच्छे कपड़े पहने उसमें। सर अभी हम बैठे हैं, ऑब्वियसली जब मुझे पता है मेरे पे कैमरा लगा हुआ है, तो 100% मेरा वो एटीट्यूड तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा कि इसका दुनिया सुन रही है, सब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है नरोज भाई, एक तो है ना वो बंदा जो मैंने बताया कि वो बॉस के सामने कुछ बोल रहा है, बाहर आके लग पुलिंग कर रहा है, और जैसा शहजाद भाई ने बताया, दोस्तों के अंदर भी गर्ज आ गई तो जरा उसकी तारीफ कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी कोई इंसान अपनी आम सी तस्वीर नहीं चढ़ाएगा जिसमें जरा उसका रंग भी पक्का सा आ रहा है और वो सूरज भी सही नहीं पड़ रहा, पीछे
कम
भी
से कम उसे अच्छी लगनी
उसे
चाहिए।
अच्छी लगनी चाहिए, और थोड़ी टच करेगा उसको फिर चढ़ाएगा। और ऐसा ही है, ये एक नॉर्म है सोशल मीडिया पे, वो अपना बेहतरीन रुख दिखाया जाता है, इसको भी मतलब मुनाफ़त के अंदर लेकर आएंगे।
मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ना मेरा मुराद है ना, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से नहीं था, क्योंकि देखिए जाहिर है हम जब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगना चाहिए, हम सेट भी इसी तरह का बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। और जैसे आपने फोर्सेस की मिसाल दी, पुलिस की मिसाल दी, फौजी की मिसाल दी, तो वो उनकी यानी फिजिकल अपीयरेंस के साथ है ना, बाज़ अगर मजबूरी होती है, अगर फौजी है ना या पुलिस, कई जगह बिल्कुल ऐसे आजी और पोलाइट वे में हर जगह बात करेगा ना, तो वो फिर उसका काम नहीं हो पाएगा।
मैं थोड़ा सी गुजारिश पेश करूं इसमें, कि देखिए हम बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, मौजू कोई भी हो, उनवान कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, हमारे लिए सबसे अहम चीज ये है कि इस्लाम इस बारे में क्या तालीमात देता है। तो ये जो मुनाफिकत या दोगलापन है, ये इसमें ना धोखे का उनसर है, फरेब का उनसर है, किसी को नुकसान पहुंचाने का पहलू
एक्चुअली
पाया जाता है बुनियादी तौर पर। मैं आसान करके बयान कर रहा हूँ, नहीं तो अगर किताब में जो इस्तलाहात लिखी है वो बयान करूंगा तो उसे फिर तफसील से बयान करना पड़ेगा।
इसलिए मैं उसमें
लेकिन
एक चीज ऐड
जी
करूं, उसके बाद आप
जी
कंटिन्यू करें, अहम बात कर रहे हैं। ये चीज हर जगह पर है, यानी आप इस्लामिक फाइनेंस को देखें ना, तो
जी
मुफ्ती साहब इशारत फरमा रहे थे कि इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद क्या है, वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स, कि हर वो चीज जो मुसलमान को फायदा दे और गलत वो चीज जो मुसलमान को नुकसान पहुंचाए,
जी
जरा सूद नुकसान
जी
पहुंचाता है। अब बिल्कुल कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यहाँ पर डबल फेस वो होगा जो मुसलमान की ऑप्शंस को लिमिटेड कर देता है, यानी अब वो फैसला करने के लिए उसके पास सही मवाद मौजूद नहीं है और उसके सामने झूठ बोला गया।
तो अब इसको आप देखिए, आप जो बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं, दोनों ही की बात को मैं सेकंड कर रहा हूं। वो क्या, एक तो हदीस पाक में मजम्मत है कि लोगों में से बदतरीन शख्स कौन है, जल वजहैन के लफ्ज आए, दो मुंह वाला, और
तो
उसकी वजाहत खुद हदीस में है कि एक के पास जाकर कुछ कहता है और एक के पास जाकर कुछ कहता है। तो अब इसी हदीस की शरह में उलामा ने इस पहलू को बयान किया कि यहाँ पे जो है ना वो बुराई का पहलू है, कि मैं सोबान भाई के पास आकर कहूँ शहजाद भाई आपके लिए ये नेगेटिव मार्क्स पास कर रहे थे, और शहजाद भाई के पास जाकर कहूँ कि सोबान भाई ये नेगेटिव मार्क्स आपके लिए पास कर रहे थे, तो ये मजम्मत है,
और नीयत भी
ये
खराब है
नीयत भी
उसकी।
खराब है, ये दोगलापन है, ये मुनाफिकत है, ये चुगलखोरी है और ये निफाक की अलामत है। लेकिन अगर दो भाइयों में झगड़ा हुआ हुआ है, दो दोस्तों में झगड़ा हुआ हुआ है, अब दोनों की बातचीत बंद है और मैं जाकर एक से कहता हूं कि फुला ने आपको सलाम कहलवाया, और उससे भी जाके कहता हूं,
बजाहिर सलाम नहीं,
बजाहिर नहीं कहलवाया, अल्फाज के साथ
बजाहिर
उन्होंने नहीं कहा,
लेकिन बात का
लेकिन
फायदा
मेरी
है।
नीयत यह है कि मैं सुलह करा दूं इनमें, इनकी मोहब्बत जो है कायम करवा दूं, और मैं जाकर यूं कहता हूं तो दुरुस्त है। और जो आपने पहलू बयान किया वो अपनी जगह वैलिड है, कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस बात को बयान फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि ये ईमान वालों तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते
करते
नहीं।
हैं
लेकिन इसका एक और पहलू, एक तो ये है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमेशा वो बातें करें जो हम करते भी हैं, बल्कि इसको यूं लेना चाहिए कि जो हम अच्छी बातें करें उनको हम
बनाए।
अपनाएं भी। जैसे अल्लाह की रहमत से हम अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत को देखते हैं कि जब आप कोई बात इरशाद फरमा रहे होते हैं तो या तो हमने माजी में किसी ना किसी तरह वो अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत का हिस्सा देखी होती है, या फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ऐसा कब करते हैं, तो वो फिर पता चलता नहीं अमीर अहले सुन्नत इस अच्छी बात के भी आमिल हैं। इसमें जो नेगेटिव पहलू है ना, मैं समझता हूँ शहजाद भाई, वो ये है, ये शैतान का वार है, वो हर बुराई में मजीद बुराई डालना चाहता है और वो हर अच्छाई की अच्छाई को कम करना चाहता है। जब हम कुछ अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि अच्छी ही बातें करें और अच्छी बातों को हम अपने ऊपर नाफिज भी करें। जब हम अच्छी बात कर रहे होते हैं सोबान भाई, तो बाज औकात जहन में ये आता है, अवाम में भी आपने देखा होगा, बाज लोग कहते हैं कि जी मैं दर्स क्यों दूं, मैं नेकी की दावत कैसे दूं, मैं तो खुद ऐसा नहीं हूं। तो याद रखिए हमारे ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, नंबर एक अच्छी बात अपनाना और नंबर दो अच्छी बात फैलाना। तो अगर हम अच्छी बात अपनाएं और वही फैलाएं तो ये तो समझ लें गुड ही है ना, हर लिहाज से बेस्ट है, बेस्ट एवर है। लेकिन अगर मैं किसी अच्छाई का अमल नहीं कर रहा तो क्या मैं उस अच्छाई को फैलाऊंगी, तो मैं उस अच्छाई को फैलाऊं। और बल्कि मुशाहिदाती बात यह है, तजरीबे की बात यह है कि सुभान भाई बाज औकात कोई शख्स उस अच्छी बात का अमल करने वाला नहीं होता, लेकिन वो करता रहता है वो अच्छी बात, दूसरों को फैलाता रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो, अब वो वजह कुछ भी बनती हो लेकिन वो भी उसका आमिल
और
बन
जिस तरह
जाता
इमाम
है।
हुदैन ने फरमाया कि अमल करो, आगाज उसका रियाकारी के साथ होगा, फिर वो आदत बनेगी। फिर उसमें मुनाफिकत का लफ्ज बहुत भारी है,
जी
मुनाफिक किसी को कह देना ये उसके ऊपर भी बड़ा भारी है, लफ्ज भी बड़ा है। अब वो किसी को ये कह देना कि जी मुनाफिकत वो कर रहा है, एक तो ब्रांड भी बन जाता है कुछ लोगों का ना, कि पता चल जाता है ये बंदा आ रहा है, इससे जो बात कहनी है फर्स्ट हैंड तो मैंने मानी नहीं, वो तो मैं पहले टैली करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा, तब मैं मानूंगा कि ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। और फिर जब उसका ये ब्रांड बन गया, अब उसके दोस्त उसके रिश्तेदार सारे उसे खींचेंगे, उसकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी। तो करने वाले को पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो अपनी अल्फाज की अपनी शख्सियत की कदर खो रहा है अगर वो मुसलसल ऐसा रवैया रखता है। तो बहरहाल मुनाफिक का लफ्ज किसी को कहा जाए, ये लफ्ज कहना किसी को, क्या आप उससे फरमाते हैं कि आपस में लोग एक दूसरे को कहें?
देखें, जाहिर सी बात है कि ये कहना तो अच्छा नहीं होगा, हम भी जो अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हम किसी फर्द की बात नहीं कर रहे, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे, किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहे, जनरली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी महफूज फरमाए, हमारे देखने सुनने वालों को भी महफूज फरमाए, लेकिन पर्टिकुलर फर्द पे इसका इतलाक दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मैंने जब शुरू में बात की थी तो मैंने एक बात कही थी कि मुनाफी के एतिकादी तो अब हम किसी पे हुक्म नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो वही के साथ खास था, क्योंकि मुनाफिकत क्या है, दिल में कुछ है जबान पे कुछ, तो हम कैसे जान सकते हैं किसके दिल में क्या है। हाँ, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं बाद उकात, लेकिन जरूरी नहीं है जो सिम्टम हमें फील हो रहा है, जो साइन हमें फील हो रहा है मुनाफिकत का, वो मुनाफिकत वाला हो भी, हो सकता है उसका कोई पॉजिटिव रीजन हो या उसकी कोई माकूल वजह मौजूद हो, तो हमें कहना नहीं चाहिए किसी को मुनाफिक, चाहे वो एतिकादी हो, इवन चाहे वो अमली हो। वो सिफात के जो मुसलमानों वाली नहीं है या धोखे और फरेब पर मुश्तमिल, वो किसी में पाई जाती हैं तो लोग उसे मुनाफिकत या मुनाफिक कह देते हैं। तो कहने के एतबार से बात तो दुरुस्त है, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है, मुस्तकिल झूठ बोलता है, मुस्तकिल फरेब देता है, मुस्तकिल धोखे देता है, तो उसको मुनाफिक ही कहेंगे लोग, उर्फ आम में लोग कहेंगे, अगरचे नहीं कहना चाहिए। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ इस वक्त के हम अपने बच्चों को भी तो सिखाते हैं ना, बास वर्ड्स होते हैं जो हमारे माशरे में राइज हैं, और वो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए बोले जा रहे होते हैं सुबान भाई, वो इजाद भी उसी चीज के लिए हुआ है, लेकिन हम उनको चेंज कर देते हैं, उन लफ्जों को हम तब्दील करके अपने
थोड़ा
बच्चों को
सॉफ्ट सॉफ्ट
दोस्तों
सॉफ्ट
दोस्तों में तो है ना टैग ही लगा देते हैं ना, बाज दोस्तों में कोई एक दो दोस्त के लिए वो मजाक में लगाए या सीरियसली कहें टैग लगा देते हैं, उसकी बात होगी ना तो कहेंगे यार वो मुनाफिक, इसकी बात नहीं करो। अब एक तो इतना भारी लफ्ज, जैसे आपने कहा कि इतना भारी लफ्ज एक गाली की तरह ही लगता है, ठीक है ना, उसके बाद आप मतलब टैग लगा दें अपने दोस्त पे, मुसलमान दोस्त पे टैग लगा दें, तो ये मतलब कोई गुनाह कबीरा या कुछ इस तरह नहीं होगा यार, ये क्या?
कुरान करीम तो मना फरमाया। देखिए दो बातें हैं, एक शख्स वाकई में मुनाफिकत वाली सिफात रखता है उसको कहा जा रहा है, तो अगर चाहे ये सच ही क्यों ना हो, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़कर अर्ज कर रहा हूँ, अगर चाहे सच ही क्यों ना हो लेकिन उसको यूं ना कहें। क्यों? क्योंकि हमें उसे बचाना है या नहीं बचाना, अगर तो हमें उसे उस बुरी सिफत से निकालना है जिसमें वाकईतन वो मुब्तला है, तो हम टॉन्टिंग करके उसका नाम बिगाड़ के तो नहीं निकाल सकते, उसे अच्छे अंदाज पे कवर करेंगे हम और उसको हम राह रास्त
यहाँ
पर
पे
लेकर
एक चीज
आएंगे।
बचने के लिए भी है ना, मिसाल के तौर पे शौहर और जौजा के दरमियान में नहीं बनी और उन दोनों के दरमियान या अलहदगी हो रही है या बहुत अरसे से एक कंफ्लिक्ट का माहौल चल रहा है। अब
जी
यहाँ पर आमतौर पे देखा जाए, अगर उस शौहर से पूछा जाए तो अपनी जौजा की बहुत सी गलतियां निकाल देगा, बहुत सी बातें बताएगा, और जौजा से पूछा जाए तो उसके पास भी पूरी लिस्ट होगी कि क्या करता है, क्या इसके हालात है। अब यहाँ पर यकीन कीजिए, उस शौहर से जब हम मिलते हैं ना, हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा फिट है, इस बंदे में कोई ऐसी चीज नहीं है, एक एक्सेलेंट दोस्त है और बहुत ही जबरदस्त है। अब आप देखिए, उसी बंदे की जात के दो रवैये सामने आ रहे हैं, वो उसके साथ नहीं निभी उसकी
जी
और वो उसके साथ नहीं सही था, लेकिन ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है एक जगह पे, एक बंदा बैठा है उसका नाम जैद है, और हम वहां पे चले जाते हैं और वहां जाके जैद से गुफ्तगू शुरू करते हैं। अब जैद पहली बार हमें मिला आज, होना तो ये चाहिए कि जाके उसकी पर्सनैलिटी का खुद से एनालिसिस करें, कुछ देखें हमसे उसको कितना प्यार है। अब जैद के पास जाने से पहले अगर किसी ने हमारे कान भर दिए कि ये बंदा ऐसा है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये था वो था, तो समझ ले जैद के पास जाने से पहले बिग क्रॉस लग गया हुआ था,
जी
जेन खराब हो गया था, पॉल्यूट हो गया हुआ था। अब जैद की जात से मुझे जो फायदा था भी ना, मुझे वो फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी की इन्फिल्ट्रेशन जो हो गई, इंटरफेरेंस हो गई, उससे काम खराब हुआ। उस बंदे ने लड़ाई कराना चाहिए, उसकी जैद के साथ लड़ाई थी, वो नहीं उसके साथ निभा पाया।
जी
तो इस तरह से आप इस चीज को किल भी कर सकते हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही होती है, अभी तो हम इंसानों की आपस में बात कर रहे हैं कि दो चार खानदान के अंदर बात हुई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल के ऊपर ऐसी बातें चल रही होती हैं। मैंने बगैर तहकीक के शहजाद भाई को ट्रांसफर कर दी, शहजाद भाई ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, आपने उसको फिर फॉरवर्ड कर दिया। ये जो
जी
एक ट्रेंड है, मतलब
जी
आपको मैं कॉमन नाउन के तौर पर ले
जी
रहा
जी
हूँ कि ऐसे जो लोग करते हैं, तो इसके ऊपर भी तो कई वीडियो होंगे कि बगैर तस्दीक के खबर आगे फॉरवर्ड ना करो।
तो हदीस पाक में है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा दे, तो एक यही चीज हमारे लिए काफी है, हमें तहकीक कर लेनी चाहिए और फिर ही आगे बढ़ानी चाहिए। और जिस जहां से आपने इस बात को निकाला है कि ताल्लुकात डिस्टर्ब हो रहे हैं, और यहाँ पे ये भी जहन में रखें कि बाज अफराद शहजाद भाई वो ना हर किसी का चांद बनने की कोशिश करते हैं, आपके पास आएंगे ना,
ऐसे ही
अरे शहजाद भाई क्या कमाल की बात की है आपने, ये जबरदस्त, शहजाद भाई को यहाँ पे डन कर दिया है, और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बात अगर सुबान भाई ने कही है तो सुबान भाई क्या जबरदस्त बात की है यार आपने, दिल खुश कर दिया। तो इस तरीके के अफराद भी होते हैं, और फिर यही अफराद होते हैं जो जाकर शहजाद भाई को किसी और की बुराइयां करके खुश कर रहे होते हैं और सोबान भाई को किसी और की। ये मैं जाहिर सी बात है हम तीनों बैठे हुए तो बार बार हम तीनों का नाम आ रहा है ताकि हम किसी और का नाम लें, तो ये तो एक सिस्टम
बटरिंग
था
करने
जी।
वालों की तादाद बढ़ती जाए।
तो अब यहाँ पे जो आपने पहलू उठाया मियाँ बीवी का, बिलखसूस जो रिश्ता है शोहर और जोजा का जो एक रिश्ता है, और ये बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, इसकी खराबियां अगर आप देखेंगे सोबान भाई, जाहिर सी बात है पब्लिक डीलिंग है हम सबकी, और हम सब कोई आसमान से तो नहीं आए, इसी माशरे में रहते हैं, खानदानों में बसते हैं, तो हमारे सामने हम देख रहे हैं कि हमारे बचपन में हमारे जिन जोड़ों की शादियां निभ गई निभ गई, अब ऐसा लगता है कि कोई गुजारा करने के लिए तैयार नहीं। उसका एक पहलू ये कान भराई की मुहिम भी है, एक तो पेट भराई की मुहिम होती है ना कि आप किसी को खाना खिलाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, वो बहुत पसंदीदा। लेकिन जो कान भरने की मुहिम है ना, ये भी चल रही होती है, और करने वाला अपने मुख्तसर से फायदे के लिए दो अफराद की पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है।
कभी कभार फायदे के लिए करता है, कभी कभार उसकी आदत होती है, उसने कुछ ना कुछ कहना जरूर है वक्त पास करने के
बिल
लिए,
बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि बाज़ औक़ात मनफियत भी नहीं होती, बेनिफिट भी नहीं पहुंच रहा होता, लेकिन वो अपने
उसे इंग्लिश में
प्यार।
कहते हैं टू शूट द ब्रीज, बस
हाँ
उसने हवा को उसने करना, मुंह से निकालना है बस।
हाँ तो अल्लाह ताला हमें,
और वो देखे ना किसी जगह बैठे हुए, आमतौर पर कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे शादी नहीं हो रही बच्ची की या बच्चे की शादी नहीं हो रही, खासतौर पर बेटी की कहा जाए क्योंकि उसको फीस ज्यादा होगा, वहां बैठ के बार बार उससे पूछना अभी तक शादी नहीं हुई क्या मसला बना। अब वो जिसकी शादी नहीं हो रही उससे ज्यादा टेंशन आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये लाजमी सी बात है। इसी तरह एक बंदा बेरोजगार है या उसके अंदर कोई और कमजोरी है, जानबूझ के उसी कमजोरी को हाईलाइट करना और फिर उससे जो जवाब मिले अब उस जवाब को चहक चहक के पूरी कंपनी या पूरे खानदान में फैलाना, यदि वजह ये बनी है।
सुभान भाई और शादी में चाहूंगा इसमें एक और पहलू भी हम देख लें। हम जिस शख्सियत की या हम जिस सिफत की मजम्मत कर रहे हैं बैठकर, मेरा ख्याल है हर शख्स करेगा, लेकिन इसमें क्या मेरा रोल नहीं होना चाहिए? इसमें क्या शहजाद भाई का रोल नहीं होना चाहिए? इसमें क्या आपका रोल नहीं होना चाहिए? इन मानों में कि एक शख्स मुझे आकर कुछ सिखा रहा है, कोई पट्टी पढ़ा रहा है, कोई नेगेटिव थॉट जो है वो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे जहन में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बच्चा हूं। वैसे तो मुझे सारी अकल है कि मुझे बिठाना कहाँ पर है, मुझे रिस्पेक्ट कैसे मिलनी है कैसे नहीं मिलनी, और मुझे बात कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे आके मैं मफलूज क्यों हो जाता हूँ, हैंग क्यों हो जाता हूँ, और मैं ये फैसला क्यों नहीं करता कि ये शख्स जो मुझसे ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, आया मैं इसका एनालाइज तो करूँ जो आपने बात की।
मैं बात अर्ज करूंगा आपसे महरोज भाई, देखिए ऐसा नहीं है, उसकी वजह यह कि नेगेटिव में ताकत बहुत ज्यादा है, नेगेटिव इज समथिंग वेरी पावरफुल। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं आप दोनों को यहाँ बिठा के अपलिफ्ट करना चाह रहा हूँ ना, आप में कुछ जज्बा भरना चाह रहा हूँ और आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं
जी
क्रिस्टल क्लियर लॉजिक्स ले आऊं, बहुत जबरदस्त फसाहत तो बलागत का मीह बरसा दूं और दलायल दे दूं आपको और बहुत ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, आप दोनों नहीं अपलिफ्ट हो सकते जब तक आप अंदर से नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं चाहूँ ना 2 सेकंड में आपको गिरा सकता हूँ,
तो
और ये
मैं
मैं नहीं कोई भी। देखिए मैं आपको कहूँ कि जी महरोज भाई, ये आपकी शक्ल से तो वाजह तौर पर लग रहा है आपको यूरिक एसिड बढ़ाओ, आपकी चाल जैसी थी लग रहा है आपको कि न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, वो आपकी शक्ल वैसी होगी, वो 4-5 दिन पहले जो फौत हुआ था वो भी ऐसे हो गया था, आप टेस्ट करवाए। अब ये चीज जब तक टेस्ट नहीं ना हो जाएगा आप नहीं टिक के बैठेंगे, आपके आसाब मजबूत हो सकते हैं, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ चैनल पर बैठे हुए।
कॉमनली
हाँ जी
ऐसा
ऐसे है, क्योंकि नेगेटिव बहुत पावरफुल होता है, नेगेटिव में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, आप किसी के जेल में कोई नेगेटिव बात डाल दें यकीन करें जब तक क्लियर नहीं ना होगी उसको चैन नहीं आएगा।
लेकिन सोमान भाई देखें, चले इसी बात को आपके लेता हूं मैं, आपने जो बात कही कि नेगेटिव में पावर होती है, मैं तो इससे एग्री टोटली एग्री नहीं करता, पार्शली मैं एग्री कर लेता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ नेगेटिव में होता ना तो फिर तौहीद का पैगाम नहीं फैलता, फिर रिसालत का पैगाम नहीं फैलता, फिर जिस मुआशरे में मेरे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उसका सबको पता है कैसा था, उस मुआशरे में ये तौहीद और रिसालत की और दीन इस्लाम की शमा जलती नहीं, फिरोजा नहीं होती और फैलती नहीं। तो एक पार्शली मैं आपसे रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करूंगा, लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं, अगर आपने मेरा इस्तिस्ना किया, मुझे आपने कहा कि मेरे तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप जो है सर्वाइव कर जाएं, लेकिन कॉमनली ऐसा होता है, इसके पीछे क्या बात है सर? इसके पीछे बात यह है कि जिस शख्स की तरबियत हुई हुई, जिस शख्स ने सीखा हुआ है, जिस शख्स की गैदरिंग पावरफुल है, जिस शख्स के पीछे कोई सपोर्ट है, तो वो इन मुनाफिकाना रवैयों से बच सकता है, क्योंकि उसके पास शील्ड है सजाद भाई। तो जब हम देखते हैं अभी पिछले दिनों जब ये कोविड आया तो लोगों ने हिफाजत शुरू कर दी ना, अब ये जो सिफत की हम बात कर रहे हैं, हम जो दोगलेपन की बात कर रहे हैं, मुनाफिकत की बात कर रहे हैं, लोगों की साजिशों की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो माशरे में है ना, तो इससे हिफाजत के लिए हमने शील्ड क्यों नहीं ली दी? सवाल भाई फिर बात तो मुझ पर ही आती है ना कि अगर मुझे नुकसान पहुंच सकता है तो फिर उस नुकसान से बचने की पहली जिम्मेदारी तो मेरी
यहाँ
बनती
पे
है,
महरूस
किसकी
भाई, बस
बननी
एक
है?
बात मैं आपको अर्ज करूँ, बात आपकी बहुत अच्छी है। एक इस्लामी भी थे, उन्होंने यूं हमें बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में एक ये पॉलिसी रखी हुई है, ये पॉलिसी है कि सामने टेबल पर आकर कोई बंदा तीसरे के बारे में बात नहीं करेगा,
ठीक
दिस इज पॉलिसी। आप आके बैठे हैं ना, और आमतौर पर जब दो बंदे गुफ्तगू करते हैं आप मौजूआत चेक करें हमारे मुआशरे के क्या हैं, किन मौजूआत पर बात हो रही है, اب وہ موضوعات کی ڈیٹیل دیکھیں، ایشوز پر بات ہو، مصائب پر جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر، ایجوکیشن اویئرنیس، ہیلتھ ایشوز کے اوپر، وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا کامیاب ہیں یا وہ لوگ جو نمایاں ہیں، ان لوگوں کے موضوعات کامیاب موضوعات ہیں. اب جب دو بندے بیٹھ کے تیسرے کو ڈسکس کریں گے نا، سوائے یہی ڈبل فیس، غیبت، چغلی، عزتوں کو چھالنے کے علاوہ کیا ہوگا؟ ساری باتیں تیسرے کے بارے میں ہی بات ہم کریں گے نا. اچھا ایک میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، شہزاد بھائی، لوگوں کے رویے کے بارے میں، کیونکہ جو ڈیتھ ریگریٹس جو ہم نے کچھ جگہوں پہ پڑھے، ایسے ڈاکٹر جن کے سامنے سینکڑوں بات ہوئی، انہوں نے لکھا کہ مرتے وقت انسان کے ریگریٹس کیا تھے، کیا ان کے افسوس تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکے یا کچھ نہیں کر سکے. اس میں نمبر ون ریگریٹ یہ تھا کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے جی، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہ کامن ہے، ان دا انٹائر ورلڈ کامن ہے. ایک تو زندگی ریکیپ ہوتی ہے، نمایاں مواقع آتے ہیں، میرے میں بہت سی صلاحیتیں تھیں، میں ان کو اوپر نہیں لا سکا، اور کئی بات، لیکن یہ کامن ہے کہ میں نے اپنے لیے زندگی نہیں جی. میں نے کپڑے پہنے کسی کی پسند کے دنیا کو دکھانے کے لیے، میں نے جو کام کیے اس میں نمایاں تھا پہلو، اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو یہ جو دکھاوے کا پہلو آ جاتا ہے نا انسان کی، اس میں تو اس میں بھی کافی زیادہ یہ منافقت کے پہلو ہوتے ہیں. اچھا آپ نے جو فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، وہ جو منافقین کا پورا قرآن میں بھی ذکر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے.
وہ منافق اعتقادی تھے نا،
ان میں سے کئی کا نام بھی آیا حدیث کے اندر، یعنی ان لوگوں کا کیا رویہ تھا؟
ان کے رویے قرآن پاک نے بیان کی، اور بنیادی بات جو قرآن پاک نے بیان کی نا سبحان بھائی، میں تو وہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان منافقین کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ ان منافقین کی سب سے بری صفت کہہ لیں یا سب سے بنیادی صفت کہہ لیں جس کو یہ خوبی سمجھتے تھے، یعنی یہ خوبی سمجھتے تھے منافق جو تھے یہ خوبی سمجھتے تھے، اور قرآن کریم نے اسی کو ان کی مذمت کے طور پر بیان فرمایا، اور وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ بے شک منافق اس گمان میں ہے، وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دیا جاتے ہیں. اللہ قرآن نے فرمایا وہ خادعوہم،
خود
وہ اللہ کو فریب نہیں دے رہے
خود فریب میں،
بلکہ وہ خود فریب میں ہے. یعنی ان کی مثال وہ ہے کہ انہوں نے گڑا کھودا اور اس کے اوپر چھال وغیرہ بچھا دی، اور گمان میں اس میں یہ ہے کہ ہمارا مخالف اس میں گرے گا. ایک سمجھانے کے لیے بات میں کر رہا ہوں، اور چلتے چلتے یہ خود ہی اس میں گر گئے. یا وہ شکاری ہیں یہ کہ انہوں نے پھندا ڈالا کہ اس میں آ کے جانور پھنسے گا اور ہم رسی کھینچ لیں گے، اور جب ٹانگ پھنسی اور رسی کھینچی تو پتا چلا یہ خود ہی لٹکے ہوئے تھے.
محاورہ ہے نا کہ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے، چاہے جسی سے.
تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی منافقت عملی ہی ہے نا، وہ بھی دوغلا پن ہے کہ دوسروں کے لیے گڑا کیوں کھودو، ان کے لیے سپورٹنگ رول کیوں نہیں ادا کر رہے، تم سیڑھی کا رول ادا کیوں نہیں کر رہے، تم لاٹھی کا رول کیوں نہیں ادا کر رہے، تم ایک گڑھے کا کہوں یا گدھے کا کہوں، تم رول کیوں ادا کر رہے؟
شہزاد بھائی یہ جو بندہ دو ڈبل فیس ہوتا ہے اس کو جھوٹ بڑے بولنے پڑتے ہیں.
ظاہر سی بات ہے سبحان بھائی، مطلب آپ اگر ان کو کچھ بات کہیں گے، اب آپ کے خلاف مجھے بولنا ہے اور یا ویسے ہی کچھ ہے نا ان کو خوش آمد کرنی ہے، تو مہروز بھائی میں اگر کوئی میں فار ایگزامپل مہروز بھائی کی خوش آمد کروں گا تو مجھے ایک دو تو ان کو معلوم ہے کہ میرے میں یہ خصوصیت ہے وہ میں کہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ایک دو بات ایسی کہوں گا یہ فیل بھی کر جائیں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں. سبحان بھائی ظاہر بات ہے اگر دیکھیں اگر آپ جھوٹ کی بات کریں تو آپ خوش آمد میں بھی جھوٹ کہیں گے، اور اگر کسی کی غیبت کریں گے یا منافقت کریں گے اس میں بھی آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا.
جھوٹ اتنا واضح ہوتا ہے سبحان بھائی، یہ جھوٹ اتنا واضح ہوتا ہے جس کے سامنے بولا جا رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے بارے میں شہزاد بھائی کوئی کمنٹس پاس کرتے ہیں پازیٹو کمنٹس، اور مجھے پتا ہے بھائی ایسا تو میں ہوں ہی نہیں، یہ کیسے آپ شہزاد بھائی مجھ سے کہہ لیں مہروز بھائی ماشاء اللہ فلاں کام کر، مجھے پتا ہے میں نہیں کرتا لیکن میں پھر بھی خوش ہوں گا. اس کو نگران شروع نے بڑے اچھے الفاظ،
اگر آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ صحیح کر رہے ہیں، کہ آپ فوراً نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی ایسی بات نہیں، تھوڑا آج بھی اختیار کر لے.
یہ بٹر پالش ایسی چیز ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بٹرنگ کی جا رہی ہے لیکن وہ پھر بھی اسے ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے، ये अजीब इसका जो है ना इसका नशा है।
ये बात उस बंदे को पता होनी चाहिए कि आज मेरे सामने तो कल किसी और के सामने, तो और आज मेरे सामने किसी की बुराई कर रहा तो किसी के पास जाके मेरी बुराई भी कर सकता।
इसमें पंजाबी में कहते हैं ना, मेरा सोभान भाई तो अच्छे से कहना, जब इस तरह के बार बार होता है ना तो बंदे को स्वाद आना शुरू हो जाता है, यार थोड़ा मजा आ रहा है।
अच्छा इसमें एक चीज मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ये जो मतलब हमारी जो गुफ्तगू हो रही है डबल फेस के ऊपर, इसमें ना एक चीज पूछी गई किसी से कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रेट ह्यूमन कैन हैव, एक इंसान में आप क्या बेहतरीन सिफ्ट देखेंगे। तो कमरा है, इसमें मेरे नजदीक सबसे ज्यादा काबिल कबूल आदमी कौन सा है, एक तो ना टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा काबिलियत हो, एक को बड़ा अकलमंद हो, एक डिवोटेड हो, एक हार्डवर्किंग हो, जीनियस। उसे जवाब दिया नहीं, रिमेंबर द बेस्ट क्वालिटी इज लॉयल्टी, याद रखना वफादारी ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है जो आप किसी में देख सकते हैं, और दिस इज प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। और अभी भी आप देख लें, पूरी दुनिया में देख लें आप, आपको जो लोग मशहूर या दुनियावी एतबार से कामयाबी करते नजर आएंगे या जिस हिसाब से होंगे, इनके गिर्द जो लोग होंगे ना वो लॉयल होंगे, वो लॉयल लोग होंगे, वो हो सकता है इनके पास जब आए हो तो कोई खूबी उनमें ना हो, सिर्फ वफादारी की खूबी थी, उन्होंने उस खूबी की वजह से उन्हें चुना और फिर उनको कुछ बनाया और फिर उस लेवल पर ले आए। अब देखे यहां पे मैंने ये बात इस तरीके की जो आपने बात की कि वफादारी का पैमाना क्या था, कि वो झूठी बातें करता रहा उनके सामने,
नहीं सच्ची बातें करता रहा। सोबान भाई इसका तजुर्बे की बात है, मुशाहिदे की बात है, और जितने भी अफराद हैं छोटे बड़े अगर देखें तो हम सबकी जिंदगी में होते हैं कोई ना कोई लॉयल बंदा भी होता है,
और फैमिली में दोस्तों में
कोई ना कोई वालिदैन है ना,
भाई बहन से बढ़ते और लॉयल कोई नहीं,
भाई
ये मिसाल बड़ी अच्छी,
वालिदैन
है लॉयल तो कोई नहीं,
वालिदैन है, भाई बहन है, और मियां बीवी है, इनको एक साथ जिंदगी गुजारनी है तो लॉयल ही होते हैं ज्यादातर। तो अब आप देखिए वो आपको क्या बताते, लॉयल लोग जब आपके पास बैठते हैं ना वो आपको प्रमोशन भी करते हैं आपकी, वो आपकी अच्छी सिफात को डिफाइन भी करते हैं और रिफाइन भी करते हैं,
उसको हौसला अफजाई
हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन वो साथ में ना किसी बड़े अच्छे सिनेरियो में लाकर वो आपकी कोई कमजोरी भी बताते हैं।
माँ तो थप्पड़ भी मार सकती है ना,
हाँ, कि बेटा ये नहीं करना, बेटा ये कर रहे होते, यानी मैं अपनी बात अगर आज करूं, जाहिर सी बात हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों अपनी ही बातें बयान कर रहे हैं, और मदनी चैनल की स्क्रीन के जो उस तरह है उनके जहनों में अपनी बातें इस वक्त चल रही होंगी। अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी में, अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी में आज भी पहले भी बहुत सारी गलतियां या कमजोरियां जो दूर हुई वो किसी दोस्त के बताने से हमने उस पर काबू पाया।
और क्या तरीका होता है इसका,
मतलब
लेआउट भी नहीं।
मैं आपको 3 दिन पहले की बात अर्ज करूं, मैंने एक स्टेटस लगाया मोबाइल फोन पे, एक स्टेटस लगाया, बड़े पॉजिटिव माइंड सेट से मैंने वो स्टेटस लगाया, लेकिन थिंकिंग होती है, लोग किसी और सिनेरियो में भी चीजें देख रहे होते हैं, तो किसी ने देखा तो मुझे मैसेज किया, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे पाकिस्तान में मुशावरत के रुकन है हमारे, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेहरूद भाई खैरियत है क्यों लगा, तो मैंने उन्हें मुस्कुराता हुआ साइन भेज दिया, इमोजी भेज दिया, और मैंने बोला ऐसे ही लगा दिया, उन्होंने बोला नहीं इससे तो ये तासुर आ रहा है, तो फिर मैंने कॉल पर बात हुई तो उन्होंने कहा, और मैंने बोला मेरा तो ऐसा कोई तासुर नहीं था, उन्होंने कहा नहीं इससे लेंगे लोग लेंगे ना, क्योंकि आपने तो एक इबारत लिख दी है, आपने जो इबारत लिखी है जैसे शेर होते हैं ना शायर के, तो अब गालिब ने क्या मुराद ली थी, इकबाल ने क्या मुराद ली थी, या आला हजरत ने क्या मुराद ली थी, मुफ्ती आजम हिंद ने इस शेर से क्या मुराद ली थी, बाजुकात तो वाजे होता है लेकिन बाजुकात वाजे नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि जी हम जो समझे वो ही, अमीर अहले सुन्नत को भी आप देखें तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत ने क्या मुराद क्या जहन में रखकर ये कहा, इस मफहूम के जुमले इरशाद फरमाते मुझे नहीं पता, लेकिन ये समझ में ये आ रहा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसा जुमला ही ना लगाएं कि जिसको किसी नेगेटिव सोच रखने वाला, नेगेटिव थॉट्स रखने वाला घुमा फिरा के कहीं और ले जाए।
ऐसा मेरे उसमें ये हुआ कि डबल फेस बंदों के साथ डबल फेस जुमले भी होते हैं,
बिल्कुल होते हैं,
बल्कि ट्रिपल फेस
होते हैं, पता नहीं कितने फेस होते हैं, मल्टी फेसेस होते हैं। तो उन्होंने जब मुझे समझाया, मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिये वो मेरे दोस्त मुखलिस दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे शहजाद भाई क्या बताई, मेरी एक कमजोरी बताई, एक वो पहलू जिसकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी उन्होंने दिलाई, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, अब क्या हुआ अल्लाह ने चाहा तो सारी जिंदगी के लिए इंशाल्लाह इस पहलू को भी पेशे नजर रखेंगे कि भाई जब हम कोई जुमला कह रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमारा माइंडसेट तो पॉजिटिव है, लेकिन पढ़ने वाला क्या इसमें से कोई
आवाम के अंदर आ सकता है, स्टेटस आप आवाम में दे रहे हैं और उस तरह से फिर आप सोशल मीडिया की पोस्ट लगा रहे हैं उसमें देख ले। शहजाद भी आप कोई मुनाफ़िक़त के हवाले से जो जदीद दौर के अंदर
منافقت کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کے اب بہت سے پہلو آ گئے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ایک انسان وہ ہے جو سوشل میڈیا پر وہ ہے. جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی آپ دیکھ لیں، ہر پلیٹ فارم کے تقاضے الگ ہیں. اوپنلی بات کریں تو فیس بک جو ہے وہ ذرا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر کو دیکھیں اس کے اوپر اور انداز ہوگا، انسٹاگرام پر اور انداز ہوگا، اور یوٹیوب کے اوپر اور انداز ہوتا ہے. تو ایک انسان سمجھ لیں مختلف شناخت کے ساتھ آج کل ہمیں نظر آتا ہے. وہی بندہ کاروبار میں کھڑا ہوتا ہے بالکل ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے، بطور باپ ہوتا ہے اس کا رویہ اور ہوتا ہے، کسی جگہ پر گیا ہے ہیومنز آر اڈیپٹیبل، شادی پر گیا ہے رویہ شادی والا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر لے گا. موجودہ دور کے حوالے سے کوئی بات آپ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں ابھی جو مہروز بھائی نے بھی ایک بات کہی اس کے ساتھ ساتھ، جیسے نا ڈبل فیس ٹرپل فیس، ڈبل فیس کی تو بات ہو رہی ہے، دو دو تین تین چار چار فیس بھی ہو سکتے ہیں نا. ایک فار ایگزامپل جیسے نا
ایک جملہ کہا جاتا ہے میں بتا دوں کہ یار تم تو اتنے رنگ بدلتے ہو اتنے تو گرگٹ بھی رنگ بدلتے، یہ کہا جاتا ہے میں نے سنا میرے کان میں.
اچھا تو اس میں نا آپ اگر آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آپ کسی سے ملتے ہیں نا، اب میں آپ کو تھوڑا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں نا کہ آپ چل رہے ہیں، اب مجھے مہروز بھائی پسند ہے نا، تو میں مہروز بھائی راستے میں ملے تو میں گرم جوشی السلام علیکم مہروز بھائی کیسے ہیں خیریت ہیں ٹھیک ہے، وہ پھر میں آگے چلا گیا نا، وہ مسکراہٹ تھوڑی دیر رہی میری نا. اب فار ایگزامپل اس کے بعد مجھے ذیشان بھائی مل گئے آگے، اب میری ان سے سلام دعا بھی یہ ہے تھوڑی بہت نا، اب ان سے میں ملوں گا السلام علیکم ذیشان بھائی، جیسے ہی کراس کیا نا میرا یہ چہرہ تھا نا ایک دم سے، مطلب یار اسمائلی فیس سے یہ سے نا یہ ہو جاتا ہے نا، مطلب یہ بھی ایک ہے نا ایکٹنگ اور ہے نا ایک یعنی بالکل چینج نا، باڈی لینگویج چینج، ایکسپریشن چینج، تھوڑی سی ود ان اے سیکنڈ یوں کیا کیسے ہیں آپ. پھر ارے تھوڑی دیر تو بھائی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ رکھتا، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی آبزرو کر رہا ہے تو کہ ہاں یار دل سے ملا تھا یار.
میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، دنیا کی ایک بہت مشہور گاڑی بنانے والی کمپنی کا اونر تھا، وہ اپنے دو لڑکوں کے ساتھ رات کے کھانے پہ گیا،
ملازمین کے ساتھ،
ہاں مطلب پروسپیکٹس کے ساتھ جن کو اس نے کوئی جاب دینے تھا. بہرحال لڑکے ٹاپر تھے یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے، اور گاڑی بنانے والی کمپنی تھی، ساری پاس گاڑی بنوانی تھی اس نے، اور جینیس تھے اپنے اس فیلڈ کے، جینیس سمجھے جاتے تھے کہ یہ بڑے اچھے انجینئر تھے. دونوں کے ساتھ کھانا کھایا، باہر نکلے، نکلتے ساتھ ہی اس نے کہا یو آر ہائرڈ اینڈ آئی کینٹ ہائر یو فار دیٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ فار دا ڈنر، آپ کو ملازم رکھ لیا گیا ہے، آپ کو نہیں ابھی رکھ سکتا، بہت شکریہ ڈنر کا. اب جو فارغ ہوا تھا اس نے اپنا کریج سم اپ کیا، اس نے کہا سر we have not discussed even a single sentence about engineering and car manufacturing. Abhi jo dinner hua isme ek jumla bhi aapne engineering ka aur car manufacturing ka nahi bola aur mujhe farak kar diya, isko rakh liya. Iski kya wajah hai? Uska jumla sunen. Wo kehta jab salan aaya tha na dono ke samne to aapne pehle namak dala tha phir salan khaya tha aur isne pehle salan khaya tha phir namak dala tha. Meri policy ye hai ke kuch bhi change lane se pehle cheezon ko try zarur kiya jaye. Aap نے کمرے میں داخل ہو کے ساری ٹھا پا کر دی، سارے فارغ، مشینیں توڑ دو، نیا لے آؤ، پہلے چیک تو کر لو پہلے نظام کیا چل رہا ہے، اگر اس نظام میں واقعی تبدیلی کی گنجائش ہے تو لاؤ، نہیں تو چھوڑ دو. آپ نے نمک چکھا نہیں پہلے اور پہلے نمک ڈال دیا، اب کی عادت ہو گئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یور انٹائر ریسپیکٹ واز فوکسڈ آن می اینڈ یور ایوری ادر پرسن واز انویزیبل ٹو یو، کہ تمہارا ساری ریسپیکٹ ساری عزت میرے پہ تھی، باقی ہر بندہ تمہارے نزدیک تھا ہی نہیں. انویزیبل کا لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بیرے، ویٹر، شوفر جو باہر گاڑی کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو دربان ہے، کسی پہ تمہاری نظر نہیں تھی، جبکہ تمہارا دوست جو تھا نا اس نے پلیز اور تھینک یو سب سے زیادہ استعمال کیا، اور صرف میرے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ سب کے لیے استعمال کیا. تو لیڈر وہ ہے جو پورے سسٹم کے اندر عہدے کو نہیں انسان کو دیکھے، اس کا امپیکٹ جو جاتا ہے وہ دیکھیں. اور جب ہم ٹو فیس کی بات کر رہے ہیں، یہ بندہ بھی در حقیقت انصاف نہیں کر رہا ہوتا جس کے ساتھ جا کے جھوٹ بول رہا ہے، جس کی بات کر رہا ہے. ٹو فیس کرنے والا در حقیقت غیبت کر رہا ہے، ٹو فیس والا بندہ در حقیقت چگلی کر رہا ہے، ٹو فیس کرنے والا در حقیقت جھوٹا ہے. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تبھی تو وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے نا، اور یہ چیزیں ساری کی ساری گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور معاشرے کو بگاڑ لیں.
لیکن سبحان بھائی میں اس میں ایک چیز اور ڈسکس ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا تو یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ڈبل فیسز ہو، ملٹی فیسز ہو یا ڈیول فیسز ہو تو ہم اس کو بولیں منافقت، ہم اس کو بولیں دوغلپ، نہیں بالکل نہیں.
फर्क होता है बाजू। आप जब एक बालिग शख्स से, एक समझदार मेच्योर पर्सन से बातचीत करते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि दुनिया का कोई भी जिसकी अकल सलामत है वो इसमें चेंज करता होगा, बल्कि वो ऐसा ही करता है कि जब एक मेच्योर पर्सन से बात होती है तो वो मेच्योरिटी के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन जब वही एक छोटे से बच्चे को उठाकर गोद में लेता है और उससे बातचीत करता है या उससे जो भी इंटेंशन दे रहा होता है, उधर उसकी इंटेंशन जो होती है वो मेच्योरिटी वाली उस लेवल की नहीं होती, तो अब इसको ड्यूल फेस नहीं कहेंगे। तो इसमें एक नियत का बड़ा बुनियादी
धोखा आंसर।
और दूसरा ये है कि इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि अगर मैं बुरा हूं, बुनियादी तौर पर मैं बुरा हूं, मेरे अंदर एक सिफा थी कि जी मैं मुस्कुराता नहीं, मैं लोगों से नहीं मिलता, और मुझे किसी ने ये रियलाइज करवाया कि जी आप तो अजीब बद अखलाक किस्म के आदमी हो, ना मुस्कुराते हो ना किसी से मिलते हो, तो कभी कभी मुझ पर गलबा हो जाता है उस चीज का। किस चीज का? कि उन्होंने जो बताया था मैं उसे खत्म करने की कोशिश करता।
वैसे नेचर यही है कि वो इस तरह पुरतपाक लेने
नहीं, से नहीं मिलता। अब अगर मैं मिल रहा हूं तो आप इसको दोगलापन और मुनाफिकत नहीं कह सकते। हम ये देखेंगे वो अच्छी चीज फॉलो कर रहा है या बुरी चीज फॉलो कर रहा है। मैं बात कंक्लूड कर लूं, आप बिल्कुल उसके अंदर ऐड करें, बल्कि इख्तलाफ करने का भी आपको हक है। तो हमें जो मिला ना वो ये मिला कि अच्छों की नकल करो, नकल करनी है ना अच्छों की करो। आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आता है तो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहरूप धारता था ना उसको अजाब से बचा लिया जाता है कि उस प्यारे की नकल करता था। आज मैं और आप, हम सब कोशिश करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की पैरवी करें। जो कोशिश करते हैं हम भी कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों में शामिल। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि क्या मैं उस लेवल की कर पाता हूँ, तो नहीं कर पाता। तो इसे ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, इसे दोगलापन नहीं कहेंगे।
अच्छा मैं शहजाद भाई जो कहना चाह रहे हैं ना, एक इंसान जो वाकई, जिस तरह मैंने उसकी बात की उस बंदे की ना, कि उसके बॉस ने उसको वादे तौर पर पहचाना कि वो वाकई उसकी तरह सारी रिस्पेक्ट दे रहा है और बैरे को नहीं दे रहा, और एक बंदा जो बैठा है उसे तो उसकी तरबियत ऐसी हो या मिजाज ऐसा हो। कुछ लोगों का मिजाज वाकई ऐसे होता है, और जो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन मुबल्लिगीन है और इस तरह की जॉब में होते हैं, मैं उनसे ये अर्ज कर दूं कि अगर आपका ऐसा मिजाज नहीं है ना, आप कभी भी इस सोसाइटी के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे,
सर्वाइव ही नहीं कर सकते।
ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है, एक बंदा जिसका मिजाज ऐसा नहीं है उसको आप टेबल में बिठाते हैं कि यार आप अकाउंट्स का काम करो, बैठ के आप बैठ के ऐसा कोई काम करें जिसमें इंसानों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इंसान का हर बंद दरवाजा, हर बंद दिल खोलने का नुस्खे है। ये
बातें कर,
मतलब अब मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, अब उसकी थोड़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर एक चीज है कि जब रात को मुलाजिम गलती करके गया ना, कोई गलती करके गया, हैवी गलती, अब मुलाजिम भी कीमती है, हर तरह से आपने रिटेन भी करना, बात भी करनी है, गलती की निशानदेही करनी है। कॉर्पोरेट कल्चर में कहा जाता है कि सुबह जब आएगा ना, बॉस उसकी एक अच्छाई बताए, जो कि बहुत सी है, तभी तो रिटेन करना चाह रहा
है,
कोई एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उसको बताए। ये चीज इंसान के ना माइंड सेट को एक्सेप्टेबल कर देती है, फौरन वो एक्सेप्टेबल मोड में आ गया, यानी कपड़ों की तारीफ कर दी, बात कर दी, उसके बाद अब ये बात बताए कि आपने ये काम किया। और ये मैं आपको अर्ज करूं, ये माँ बाप को भी बच्चों के बारे में करना चाहिए। मिसाल के तौर पे बच्चे के ओवरऑल नंबर अच्छे आए, उसने फर्स्ट आया, कुछ आया, ठीक है, अब ओवरऑल नंबर अच्छे आए, मैथ्स में नंबर कम है, जैसे मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं मैथ्स के नंबर देखता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, और मुझे इस बात का भी पता है कि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो कि इंसान की विजडम का और दीगर चीजों का एक मेयार है, ये सब्जेक्ट ऐसा है। अब मैंने देखा कि मेरे बच्चे के मैथ्स के नंबर कम है, लेकिन आया फर्स्ट है वो। अब मुझे बताया दो अप्रोचेज है ना, एक तो ये कि मैं सब छोड़ के मैथ्स के नंबर पर पड़ जाऊँ, उसको पूरी दुनिया कह रही है बहुत अच्छा है, उसकी माँ भी कह रही है, टीचर भी कह रही है, सब बच्चा फर्स्ट आ गया, बच्चा फर्स्ट आ गया, और मैं मैथ्स लेके बैठा हूँ। अब होना क्या चाहिए, उस दिन तो कम अज कम मैथ्स से ना बोलूंगा, यकीन करें, उस दिन सिर्फ फर्स्ट आए, खिलौना लेकर खत्म करें, सेलिब्रेशन करें। अगले दिन वो भी किसी जगह पे, जब वो तैयार हो, बाग में मेरे साथ है, गेम के, ओह बेटा मैथ्स के अंदर ये वो करके, ये एक वो चीज है जो एक्सेप्ट, कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे, वो कहेंगे यार बच्चा है, मुझे भी जल्दी है, फारग कर दो। ये चीजें मैटर करती है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं और ये डबल फेस्ड, गीबत, इस जैसी चीजें आपके अंदर मौजूद है, तो ये याद रखें, आप कभी भी पब्लिक डीलिंग में कामयाब नहीं हो सकते।
अच्छा, पब्लिक डीलिंग में ना बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद आपके साथ भी हुआ हो, लेकिन अगर मैं आपके साथ होऊंगा तो फिर होगा ये या हो जाएगा ना, कि बहुत सारे मतलब मैच्योर लोगों की बात करें, आम और ख़ास की बात करें, तो बाकायदा तो मैंने फिर ना उनको रियलाइज़ करवाया, मैंने कहा भाई मैं जैसे मिसाल दूँ कि है ना, आप हम तीनों जा रहे हैं ना, अब आप माशाल्लाह दोनों बहुत मशहूर शख्सियत है ना, और मैं एक आम सा बंदा हूँ, अब जा रहे हम तीनों हैं, अब ये सामने से तीन लोग आ रहे हैं, तो अभी ना वो आपसे सलाम करेंगे, ठीक है ना, आपसे सलाम किया, मतलब एक सलाम हैंडशेक नहीं कह रहा, तो मैंने बाकायदा तो उनको कहा भाई मैं भी मुसलमान हूँ यार, तो फिर तो वो थोड़ी सी खिसिया नहीं हंसी, हंसने के बाद फिर हाथ मिला लिया ना, तो आपसे हाथ मिलाया, इनसे मिलाया, तो भाई मुझसे क्यों नहीं मिलाया, चलो मैं अपने आप को थोड़ा मान लिया कि भूल गए होंगे वो, लेकिन एक बार नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि आप लोग मशहूर हैं, मैं मशहूर नहीं हूँ, मशहूर के साथ है ना आप सेल्फी भी लेंगे ना तो वो जो दूसरा बंदा है ना वो इस्तेमाल देगा, और ऐसे कोई यानी दोनों मशहूर है तो फिर तो मेहरोज भाई अगर सोबान भाई एक साथ तस्वीर खिंचाएंगे ना तो ये शहजाद आ जाएगा ना तो आप इतनी स्माइल नहीं देंगे, थोड़ी सी कम हो जाएगी,
आपको ज्यादा देखे
नहीं, नहीं, नहीं मैं तो बात कर रहा हूँ, मतलब ये भी है हमारे माशरे में ना, आप देखें तो यार ये क्या अजीब रवैया है यार। अच्छा एक मिनट, एक और शेख साहब की, शेख साहब से मुराद मतलब मेरे मुंह से तो शेख ही निकलता, शेख भी है,
शेख नहीं
बिल्कुल, तो है ना देखें अगर एक है ना प्रॉपर पर्सनैलिटी ना, मैंने यार मतलब शेख साहब जैसा बंदा अपनी लाइफ में,
नाम ले सर मैं यहाँ पर जो ना वो
अमीर सुन्नत मौलाना इलियास काजी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप वो मुस्कुराएंगे ना, आपको मुस्कुराहट दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो उनमें मतलब जब तक आपको बात कर रहे हैं कोई तगयुर नहीं आएगा ना, शेख साहब के कॉल ऑफ एल में जो है ना तजाद नहीं देखा उनके एक्सपीरियंस।
मैं आपकी बात बताऊँ, कुड और शुड पे जिंदगी नहीं बसर होती, कुड और शुड पे, यानी कि ऐसा हो ऐसा हो, आप जिस हस्ती की बात कर रहे हैं ना वो पता कौन हस्ती है, यानी कि ना मैं अगर चाहता हूँ मेरी जिंदगी हटके गुजरे, मेरी तनख्वाह हटके हो, तो फिर मैं हर चीज हटके करूँ ना, हटके मुस्कुराऊं, हटके हाथ मिलाऊं, हटके पब्लिक डीलिंग करूं, हटके डिग्री हासिल करूं। जिनकी आप बात कर रहे हैं कुछ शख्सियात मैचलेस होती है, मिसाल के तौर पर आला हजरत हो गए और अमीर अहले सुन्नत की जात हो गई, ये एक ऐसी हस्तियां जिनकी ट्रेड्स जिनकी खूबियां वो किताबों में लिखी जाएंगी, नस्लों के अंदर आ जाएंगी, लेजेंड्स आएंगे। आप कुड और शुड पे नहीं रह सकते, कुड और शुड का मतलब ये होता है कि मैं जो चाहूंगा वो हो जाए या जो मैं चाह रहा हूं, आप ये चाहते नहीं, आप चैनल के हवाले से उस चीज को मतलब रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है हमारे मुआशरे की कि हम जब बात करेंगे ना 90% आवाम पर करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बंदा मशहूर होता है ना, जिस तरह आपने स्पीच करनी है कहीं पे, आप जब वहां पे खड़े होंगे ना स्पीच करने के लिए, तो आपको अगर वो लोग नहीं जानते तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आवाम से दोस्ती करने में, आपने वो बाढ़ हटानी है बीच में जो बन गई है, जब आप आ रहे होते हैं चल के लोग आपके बारे में राय कायम कर रहे होते हैं, विजडम है इसमें, डल सा लग रहा है, अकलमंद है कि नहीं, कपड़े इसने कैसे पहने, चाल इसकी इतनी है, ये जाके क्या बोलेगा, पहले भी इसकी मैंने बात सुनी है मजा नहीं आता, ये बाढ़ें लगी होती है। जब आप को कोई जानता है, सोशल मीडिया के जरिए जानता है, टीवी के जरिए जानता है, वैसे आपसे कोई मिला हुआ है, अब ये बाड़े पहली हटी हुई है, उसे पता है इसने क्या बात करनी है, ये कौन बंदा है, क्रेडिबल बंदा है, वो आपसे दुआ भी करवाएगा, वो आपसे आगे आगे तारुफ भी लेगा, और यकीन करें अगर उस दिन आप अच्छा ना भी बोल सके ना तकरीर में, उसने आकर उसी तरह मिलना है आपसे, क्योंकि वो कहेगा यार आज शायद कोई बसला हुआ था, वैसे तो इस बंदे की प्रोफाइल ये है। जिस तरह अक्सर लोग उस दिन स्पीच भी नहीं करते या कोई ऐसा फंक्शन हो तो पीछे उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो वैसे ही बैठे होते हैं। तो ये हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी है, हर बंदे का एक प्रोटोकॉल भी तो होता है ना, उस बंदे का अपना एक प्रोटोकॉल है कि वो आके मिल रहा है तो मैं इसी से मिलूंगा, क्योंकि देखें जब भी दो बंदे मिलते हैं ईगो वॉर होती है, एक जब भी दो बंदे मिलते हैं ना कुछ सेकंडों के लिए एक ईगो वॉर होती है। ईगो वॉर का क्या मतलब है, तुम कौन हो मैं कौन, तुम्हारा हुदा क्या है मेरा हुदा क्या, तुम्हारे पास कितना पैसा है मेरे पास कितना पैसा, ये कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन ये हकीकत है। जिस वक्त ये तय हो जाता है ना कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ, अब आगे सारी गुफ्तगू वैसे होती है। एक पुलिस वाला बड़े रैंक का आपसे आगे मिलता है, अब उसी तरह से गुफ्तगू करेगा ना, वाइस चांसलर किसी स्टूडेंट से मिलता है, स्टूडेंट उसी लेवल गुफ्तगू करेगा, ये चीजें तय होती है। ये चीजें
बराती वो मुनासिब जो है ना सोबान भाई, ये एक तो वैसे ही आप बयान कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन दीन इस्लाम ने भी इसको रखा है, मर्तबे और मनसब हमने रखा है। मैंने शुरू में बिल्कुल एक बात कही थी, एक है इज्जत चाहना और एक है जिल्लत पे पेश करना, दोनों में फर्क है, इज्जत चाहेंगे नहीं जिल्लत पे पेश नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जो आप बात कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा
है, बिल्कुल कितना जोर दिया गया है ना,
बिल्कुल एक्सेप्ट
कर रहा हूं, पोस्ट पे डिपेंड तो नहीं करता ना कि मेरी पोस्ट बड़ी है तो मेरे अखलाकियत कम हो गए।
अभी अभी हम बात कर रहे हैं और जब ये प्रोग्राम हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं तो हजारों लाखों लोग इस वक्त हरमैन तैयबैन हाजिर हैं, इसलिए हज करने के लिए,
حاضرین اور مکہ و مدینہ کے لیے حاضر ہیں، لیکن اگر آپ مفتیان کرام سے پوچھیں تو وہاں سے میدان عرفات سے، مزدلفہ سے، منا سے، صفا و مروہ سے، حرم کعبہ سے کالز آ رہی ہوں گی، واٹس اپ آ رہے ہوں گے، میسیجز آ رہے ہوں گے اور مسائل پوچھے جا رہے ہوں گے. سوال یہ ہے، بہت سارے ابھی جب آپ آئیں گے واپس حج کر کے تو ان میں سے ایک تعداد آپ کو بتا رہی ہوگی، یا تو اپنی غلطی بتا رہی ہوگی یا لوگوں کی غلطی بتا رہی ہوگی. ہمارا پرابلم یہ، کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یار لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں حج کرنا نہیں آتا، انہیں حج کے مسائل نہیں آتے، بعض کو بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ دم واجب ہو جاتا ہے، دیگر معاملات ہو جاتے ہیں. تو میں نے گزارش پیش کی کہ دیکھیں ہماری تو حالت یہ ہے کہ جو فرض ہم پہ دن میں 5 مرتبہ ہے، ہم نے کبھی وہ بھی
نہیں
کی، اس میں غلطیاں کر رہا ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنے جا رہا ہے. تو جو آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں نا، آپ بتائیے، سچ بتائیے گا اس وقت، ہمارے معاشرے میں کوئی سیشن، گروپ ڈسکشن دیکھیے آپ نے جس میں بچوں کو، جس میں چلے کسی کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہو کہ ملاقات کی.
آپ یونیورسٹی میں بات کر رہے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں کیسے سیشن؟
دیکھیں پلیٹ فارم ایسے نارملی ہے نا، اسکول میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، مدنی چینل پہ اگر کڈس میں آپ دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے.
بات کر رہا ہوں نا،
تو معاشرے کا حصہ ہے، معاشرے کا حصہ نہیں ہے
مہروز بھائی؟ ہے شہزاد بھائی نے جو بات کی ہے نا.
دیکھیں آپ مدنی چینل والوں کی بات نہیں کر رہے تھے نا، آپ تو ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم
جرنل بات کر رہے ہیں. شہزاد بھائی نے جو بات کی ہے نا، وہ بات بہت بہترین ہے، اور وہ انسان جو اس بات کو اپنا لے گا یقیناً وہ ایک نیکی کا کام کرے گا، اس کی پبلک ڈیلنگ بھی اچھی ہوگی اور وہ لوگوں میں بھی مشہور ہو جائے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے قبلہ حاجی عبد الحبیب بتاری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ ایک جگہ پر تھے، میں بھی ان کی خدمت میں حاضر تھا، تو بات ہوئی، ملاقات ہوئی باہر، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں نے تو اپنے پلے سے باندھ لی. آپ نے فرمایا تھا کہ سبحان بھی دیکھیں، جب ہمیں کچھ لوگ جاننے والے بن جاتے ہیں نا تو ہمارے پر رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو آپ نے جس مسجد میں بیان کیا وہاں پر وہ لوگ جن کے پاس لوگ نہیں جاتے، جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا کوئی بولتے ہوئے تتلاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اگر سب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ اس کے پاس جا کے ملیں گے نا، اور اس وقت آپ کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی ایک ملاقات آپ کو بہت بڑا فائدہ دے جائے. الحمدللہ ان کی یہ بات ایسی ہٹ کی واقعی، اور اس بندے سے جاتے جو مزہ آتا ہے نا ملاقات کا، خاص طور پہ جو بابا وغیرہ ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے.
سبحان بھائی دیکھیں، میں آپ یا دعوت اسلامی یا چند افراد اور آپ لے لیں، تو اس پلیٹ فارم سے
جن کی اسلامی تربیت ہے، گھر میں
اس پلیٹ فارم سے تربیت ہو رہی ہے. ابھی آپ نے خود بتایا کہ عبد الحبیب بھائی رکن شورا کے ساتھ آپ ایک کچھ کے لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے تھے، آپ کو ایک نصیحت مل گیا. اچھا انہوں نے بھی اتنا کھلے دل سے کر دی اور آپ نے بھی تسلیم کر دی. شہزاد بھائی اس کو تو آپ بھی ایکسپٹ کریں گے کہ جیسے
ہر ایک کو
یہ بیان کر رہا ہے، تو بعض اوقات بندہ کمزوری فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہنے جیسا بھی نہیں ہوتا کہ میں کہوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں
یا ڈر رہا ہوتا ہے،
لمبی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو، ایون چھوٹا کسی بڑے کو کوئی بات محسوس کرتا ہے، عرض کرتا ہے، تو وہ بڑا سن لیتا ہے اور اس کے ایکسپلینیشن دے دیتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سبحان بھائی ہم شروع سے اب تک کی جو گفتگو کر رہے ہیں، شاید یہ گردنیں ہلا رہے ہوں کہ ہاں ایسا ہے.
چھوٹا اگر بڑے کو سمجھائے گا، یہ جملہ ہوتا ہے، تو اب تو مجھے سکھائے گا، تو مجھے سمجھائے گا.
بڑے کی بچپن میں تربیت سے بھی
نہ، ایک مثال دے دوں نا، جیسے آپ مدنی، اگر میں آپ کو کچھ کہوں نا، یار میں مدنی ہوں، آپ مجھے بتا رہے ہو،
چل ابھی پریکٹس ہو جاتی ہے نا،
میں آپ کو ایسی اسلام کی کوئی شرعی کی فقہ کی بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کے سامنے تو یہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے ڈائریکشن کی بات کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ شہزاد یہ دیکھ فریم یہ ایسے نہیں ایسے بننا چاہیے، تو میں بالکل آپ کو کہوں گا یہ میرا کام ہے.
اب اس بڑے کی جس کو آپ کہہ رہے نا کہ تم چھوٹے ہو کے مجھے سمجھاؤ، اس بڑے کی بھی بچپن میں تربیت نہیں ہوگا. مسئلہ یہ اگر اس کی بچپن میں تربیت ہو جاتی کہ سمجھاتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کو دیکھنا ہے، تو میں گزارش یہ مدد
لیکن معاشرے کی رویہ
کر رہا ہوں کہ ان پلیٹ فارمز کا آپ انتخاب کریں جہاں سے آپ میں انڈیویجلی، فیملی وائز اور پورے معاشرے پہ جس کا نا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ کسی نیگیٹو بات کو، سبحان میں آپ کو اس کا بہت تجربہ ہوا، جب بھی آپ کسی نیگیٹو بات کو گفتگو کا موضوع بنائیں گے تو لوگ بڑی دلچسپی سے اسے سنتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، گردن بھی ہل رہی ہوتی ہے، شاید اگر ہل سکتا تو دل بھی ہل رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں میرا کیا رول ہے یا میں اس میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہوں، یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا. ये भी तो देखना चाहिए कि हम कह रहे हैं अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा तो बोल रहे हैं, तो एक चिराग आपके पास भी तो है अपनी जात का, उस चिराग को नहीं जला सकते?
या मेरोज भाई, मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ, हमारे सिलसिले का टाइम भी खत्म हो रहा है। जो शहजाद भाई का मौकिफ है वो अगर लोग अपनाना शुरू कर दें फिर तो क्या ही बात है, इस्लाह है, अच्छी बात है, यही सुन्नत का तरीका है, यही हमें औलिया के तरीकों से मिलता है, किसी में तख़सीस ना की जाए, उसे को ना देखा जाए, हर छोटे बड़े से सलाम किया जाए और गर्म जोशी से किया जाए और हर एक की राय को मान लिया जाए, इस्लाह की जाए। लेकिन ये चीजें आज तालीमी इदारों में भी फुकदान है इसका, आज घरों में भी फुकदान है, मीडिया की तरफ से भी ऐसी कोई पोर्ट्रे नहीं चीज हो रही। तो इसके लिए ये है कि अगर ये फुकदान है तो इसको अपने खुद पूरा करना है, क्योंकि तालीमी इदारों के अंदर टाइम लाइन थोड़ी है, सिलेबस ज्यादा है, पेपर सर पे खड़े हुए हैं, तो सिलेबस जो है वही पूरा नहीं हो पा रहा होता, और जो तरबियत कराने वाले हैं उनकी अपनी तरबियत है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में मिलती है। मेरे पास दावत इस्लामी के जो शोभा जात हैं, शोभा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट है और साथ प्रोफेशनल्स फोरम है, डॉक्टर्स मजलिस रही है, यही वो लोग हैं जो आगे चल के माशरे की बागडोर संभालते हैं। और हमने ये देखा है कि दावत इस्लामी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनके रवैयों में तब्दीली होती है, खौफ खुदा रखते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके रवैयों में तब्दीली होती है, इनकी डिग्री खत्म होती है बीएस की और साथ इनका अल्हम्दुलिल्लाह जरूरियात दीन कोर्स भी खत्म हो रहा होता है, बाद में प्रोफेशनल बनके इनके रवैयों की तब्दीली लोग बताते हैं, और मेडिकल डॉक्टर्स के रवैयों की तब्दीली तो उनके वार्ड बॉयज बताते हैं कि ये वाकई वो सर है जो हमें हर तरह से सहूलत देते हैं।
जैसे आपने इस्लाह की बात की ना, तो मैंने जब यहाँ पर मदनी चैनल में आया तो दावत इस्लामी का स्लोगन जो देखा ना, उसमें ही बहुत बहुत पावरफुल स्लोगन है ना, उसको जब गौर किया जाए ना कि सबसे पहले उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस मुझे अपनी, ठीक है ना, मतलब शेख साहब ने, मौलाना इलियास कादरी साहब ने जुमला लिखा है तो बड़ा सोच समझ के नाप तोल के लिखा है ना कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, यानी कि पहले अपनी कोशिश करनी है, मतलब अब बंदा अपनी इस्लाह शुरू कर दे ना इस स्लोगन को देख कर ही, फिर उसके बाद सारी दुनिया में माशरा भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, दोस्त भी आ जाएंगे, ऑफिस के सर्कल भी आ जाएगा, तो फिर मतलब एक रेवोल्यूशन आ सकता है अगर इस जुमले को ही देखें।
मीरुल सुन्नत ने ये स्लोगन सिर्फ ये नहीं है किसी खास ग्रुप को दिया हो, बल्कि उनकी तरफ से स्लोगन हर मुसलमान के लिए कि वो इसको अपनाए, और ये स्लोगन भी मीरुल सुन्नत का जो है दरहकीकत प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहदीस से ही लिया गया है कि हर इंसान, हर मुसलमान वो पैगाम पहुंचाने वाला है और आगे बढ़कर इस्लाह करने वाला और अपनी करने वाला है। तो ये प्यारे साई भाइयों, हमने जो मैसेज आपको दिया अपनी इस्लाह का और अपनी ये जो एक गलती इंसान के रवैयों में पाई जाती है, दोगलापन या डबल फेस्ड डुअल पर्सनालिटी, इससे बचने का, यकीनन इससे बचें। और इस मौजू पर मजीद पढ़ने के लिए मकतबतुल मदीना की कुतुब का मुतालिया करें। ये एक ऐसी बुराई है जिसका आपको तकरीबन हर हर किताब में, जो कि मुफस्सर और बड़ी किताब है, उसमें जिक्र मिलेगा, इसकी मुज़म्मत मिलेगी, और जो बात आप छोड़ना चाह रहे हैं ना और जो बात गंदी बात आपसे छूट नहीं रही उसकी मुज़म्मत पढ़े, उसकी सजा पढ़े, और जिस नेक बात की तरफ आप नहीं जा पा रहे उसकी खूबियां और उसको अपनाने के फवायद पढ़े। ये एक इंसान का रवैया होता है, जब वो यूं पढ़ता है तो उसका मिलान उस तरफ हो जाता है और बुरी बात से जान छूट जाती है। मदनी चैनल देखते रहिए, बहुत ही जबरदस्त चैनल है। मैं आपको दावत दूंगा हर सैटरडे को इशा के बाद मदनी चैनल पर जो मदनी मुजाकरा होता है जिसमें शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब वो सवालात के जवाब देते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो हमारे साथ रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए।
इस्लाम फॉर ऑल, इस्लाम फॉर ऑल।